नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जॉन होल्ट की पुस्तक सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिमिस्टिफाइड, सेकेंड एडिशन, जटिल उत्पादों, सेवाओं और परस्पर जुड़े तकनीकी समाधानों को विकसित करने की व्यवस्थित पद्धति पर केंद्रित व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसका मुख्य विषय मॉडल बेस्ट सिस्टम्स इंजीनियरिंग अर्थात MBSE है, जिसमें अलग अलग दस्तावेजों के बजाय साझा मॉडलों के माध्यम से सिस्टम को समझा, परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। पुस्तक आरंभ में सिस्टम्स इंजीनियरिंग की बुनियादी भाषा, उद्देश्य और जीवन चक्र संबंधी सोच स्पष्ट करती है। फिर जटिलता, हितधारकों, आवश्यकताओं, संरचना, व्यवहार और सत्यापन जैसे विषयों को मॉडल केंद्रित दृष्टि से जोड़ती है। दूसरा संस्करण आधुनिक MBSE कार्यक्रम को लागू करने, दृश्यांकन का उपयोग करने तथा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाने पर विशेष बल देता है। यह केवल किसी मॉडलिंग टूल का परिचय नहीं है, इसका लक्ष्य लोगों, प्रक्रियाओं और मॉडलों के बीच साझा समझ बनाना है, ताकि विकास के दौरान गलत फहमियां, असंगतियां और देर से मिलने वाली त्रुटियां कम हो। अध्याय सार, आत्म मूल्यांकन प्रश्न और संदर्भ इसे सीखने तथा व्यावहारिक उपयोग दोनों के लिए उपयोगी बनाते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, दस्तावेज केंद्रित काम से मॉडल बेस्ड सिस्टम्स इंजीनियरिंग की ओर बदलाव। पुस्तक का केंद्रीय तर्क यह है कि जटिल सिस्टम्स को केवल अलग अलग आवश्यकताओं, स्प्रेडशीटों, रिपोर्टों और चित्रों के संग्रह से विश्वसनीय ढंग से नियंत्रित करना कठिन होता जाता है। जैसे जैसे घटकों, इंटरफेसों, नियमों और हितधारकों की संख्या बढ़ती है, जानकारी कई जगह दोहराई जाती है और बदलाव का प्रभाव पहचानना मुश्किल हो सकता है। MBSE इस समस्या को एकीकृत मॉडल के माध्यम से संबोधित करता है। मॉडल में सिस्टम के प्रमुख तत्वों और उनके संबंधों को इस प्रकार रखा जाता है कि संरचना, व्यवहार, आवश्यकताएं और सीमाएं एक दूसरे से जोड़ी जा सके। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि किसी आवश्यकता में परिवर्तन होने पर टीम उससे प्रभावित भागों, इंटरफेसों और परीक्षणों पर अधिक स्पष्टता से विचार कर सकती है। होल्ट का दृष्टिकोण मॉडल को अंतिम चित्र या रिपोर्ट नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की साझा कार्यशील संपत्ति के रूप में रखता है। फिर भी पुस्तक की दिशा यह नहीं बताती कि मॉडलिंग अपने आप में समाधान है। उपयोगी मॉडल के लिए स्पष्ट उद्देश्य, सहमत शब्दावली, उपयुक्त प्रक्रिया और प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है। इसलिए मॉडल बेस्ड बदलाव को तकनीकी टूल खरीदने की परियोजना मानना अपर्याप्त है। यह संचार, निर्णय और परिवर्तन नियंत्रण की पद्धति में बदलाव है, जो विशेष रूप से वहां महत्वपूर्ण है जहां सिस्टम कई विषयों और संगठनों के योगदान से बनता है। दूसरा, ऑन्टोलॉजी और साझा भाषा से सिस्टम की सीमाएं स्पष्ट करना। सिस्टम्स इंजीनियरिंग में अनेक विवाद तकनीकी क्षमता से नहीं, बल्कि शब्दों के भिन्न अर्थों से पैदा होते हैं। आवश्यकता, कार्य, घटक, इंटरफेस, संचालन परिस्थिति और सत्यापन जैसे शब्द अलग टीमों के लिए अलग संकेत दे सकते हैं। पुस्तक एक मजबूत ऑन्टोलॉजिकल आधार बनाने पर जोर देती है, अर्थात पहले यह स्पष्ट करना कि सिस्टम के संदर्भ में कौन सी चीज क्या है और किन संबंधों में मौजूद है। यह आधार मॉडलिंग को सजावटी आरेखों से आगे ले जाता है। यदि टीम किसी तत्व को सिस्टम, उपसिस्टम, बाहरी अभिनेता या बाधा के रूप में एक समान तरीके से नहीं पहचानती, तो बाद की डिजाइन और परीक्षण चर्चा भी अस्थिर रहेगी। साझा भाषा सिस्टम की सीमा तय करने में भी सहायता करती है। इससे यह पहचाना जा सकता है कि कौन सी जिम्मेदारी सिस्टम के भीतर है, कौन सा इंटरफेस बाहरी परिवेश से जुड़ा है और किन धारणाओं पर समाधान निर्भर है। ऐसी स्पष्टता विशेषतः सिस्टम ऑफ सिस्टम्स परिस्थितियों में जरूरी है, जहां स्वतंत्र इकाइयां मिलकर परिणाम उत्पन्न करती है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि मॉडल बनाने से पहले या साथ साथ शब्दावली, अवधारणाओं और संबंधों पर सहमति बनानी चाहिए। इससे मॉडल विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों, प्रबंधन और ग्राहकों के बीच अनुवाद का माध्यम बनता है। परिणाम स्वरूप चर्चा केवल समाधान के चित्र पर नहीं, उस वास्तविक समस्या और उसके संदर्भ पर केंद्रित हो सकती है जिसे सिस्टम को संबोधित करना है। तीसरा, जटिलता को घटकों के बजाय संबंधों और इंटरफेसों के रूप में देखना। यह पुस्तक जटिलता को केवल सिस्टम के आकार के बराबर नहीं मानती। किसी उत्पाद में बहुत से भाग हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक इंजीनियरिंग कठिनाई अक्सर उन भागों के बीच निर्भरता, नियंत्रण, सूचना प्रवाह, सीमाओं और संचालन संदर्भ से उत्पन्न होती है। इसी कारण सिस्टम्स इंजीनियरिंग को पूरे समाधान का दृष्टिकोण चाहिए, न कि अलग अलग विशेषज्ञताओं के निष्कर्षों को अंत में जोड़ देने की प्रक्रिया। मॉडल इस समग्र दृष्टि को दृश्य रूप देता है। वह यह पूछने में मदद करता है कि सिस्टम कौन सी सेवा देगा, कौन से घटक उस सेवा में भाग लेंगे, वे कैसे संपर्क करेंगे और विफलता या बदलाव की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा। इंटरफेसों की स्पष्ट परिभाषा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि अनेक एकीकरण समस्याएं तभी सामने आती है जब दो अलग विकसित हिस्सों को साथ काम करना होता है। पुस्तक के संदर्भ में दृश्यांकन का मूल्य केवल प्रस्तुति की सुविधा नहीं है। सुविचारित दृश्य मॉडल टीम को अस्पष्टता, छूटी हुई निर्भरता और विरोधी धारणाएं जल्दी देखने देता है। हालांकि मॉडल को अनावश्यक रूप से विस्तृत बनाने पर वही बोझ पैदा हो सकता है जिसे वह कम करना चाहता है। इसलिए उपयोगी मॉडलिंग का प्रश्न यह भी है कि किस निर्णय के लिए कितनी जानकारी आवश्यक है। यह संतुलन जटिलता को छिपाने के बजाय उसे समझने योग्य रूप में व्यवस्थित करने का आधार है। चौथा, आवश्यकताओं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बीच अनुरेखणी संबंध। किसी जटिल सिस्टम का विकास तब अधिक नियंत्रित होता है जब यह स्पष्ट हो कि प्रत्येक महत्वपूर्ण आवश्यकता का स्रोत क्या है, उसे डिजाइन में कहां संबोधित किया गया है और उसे प्रमाणित कैसे किया जाएगा। पुस्तक एमबीएससी के भीतर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को इसी प्रकार के जुड़े हुए कार्यों के रूप में रखती है। वेरिफिकेशन का मूल प्रश्न है कि क्या सिस्टम निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया है। वैलिडेशन का प्रश्न इससे अलग है, क्या बना हुआ सिस्टम वास्तविक उपयोग, हितधारक की जरूरत और अपेक्षित संदर्भ के लिए उपयुक्त है। इन दोनों को मिला देने से ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें टीम सभी लिखी हुई आवश्यकताओं को पूरा कर दे लेकिन गलत समस्या का समाधान तैयार हो। मॉडल बेस्ड दृष्टि आवश्यकताओं को कार्यों, संरचनात्मक तत्वों, व्यवहार और परीक्षण गतिविधियों से जोड़ने में सहायता देती है। यह संबंध बदलाव के प्रभाव का मूल्यांकन अधिक अनुशासित बनाता है। उदाहरण के लिए, किसी संचालन संबंधी आवश्यकता के संशोधन पर टीम केवल संबंधित दस्तावेज नहीं बदलती बल्कि संबंधित डिजाइन निर्णयों और प्रमाणन विधियों की समीक्षा कर सकती है। पुस्तक का उद्देश्य यह दावा करना नहीं है कि मॉडल परीक्षण का विकल्प है, बल्कि मॉडल शुरुआती तर्क, कवरेज और सुसंगति को बेहतर बनाता है, जबकि प्रयोग, निरीक्षण, विश्लेषण और प्रदर्शन जैसी गतिविधियां प्रमाण उपलब्ध कराती है। इस प्रकार अनुरेखणीयता जवाबदेही और निर्णयों की पारदर्शिता दोनों को मजबूत करती है। अंत में एमबीएससी कार्यक्रम लागू करने में लोग, प्रक्रियाएं और टूल का संतुलन। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक पक्ष यह है कि एमबीएससी को संगठन में लागू करना केवल किसी सॉफ्टवेयर मंच को अपनाने का मामला नहीं है। मॉडलिंग टूल उपयोगी हो सकते हैं पर वे अस्पष्ट प्रक्रियाओं, असहमत परिभाषाओं या अपर्याप्त कौशल की भरपाई नहीं कर सकते। प्रभावी कार्यक्रम के लिए टीमों को यह तय करना पड़ता है कि मॉडल किस उद्देश्य से बनाए जाएंगे, किस स्तर की जानकारी रखी जाएगी, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी और मॉडल की गुणवत्ता कैसे जांची जाएगी। इसी तरह मौजूदा दस्तावेजों, समीक्षा प्रक्रियाओं और जीवन चक्र गतिविधियों के साथ मॉडल का संबंध स्पष्ट होना चाहिए। यदि मॉडल समानांतर प्रशासनिक बोझ बन जाए तो उसे अपनाने का प्रतिरोध स्वाभाविक है। ओल्ट की प्रस्तुति का मूल्य इस बात में है कि वह एमबीएससी को लोगों, प्रक्रियाओं और टूल के परस्पर निर्भर संयोजन के रूप में देखती है। लोगों को मॉडल पढ़ने, बनाने और उन पर चर्चा करने की क्षमता चाहिए। प्रक्रियाओं को परिवर्तन, अनुमोदन और सहयोग संभालना होता है। टूल को इन कार्यों का समर्थन करना चाहिए, उनका उद्देश्य निर्धारित नहीं करना चाहिए। चरणबद्ध अपनाव अक्सर अधिक व्यावहारिक होता है जिसमें संगठन पहले एक स्पष्ट समस्या जैसे इंटरफेस प्रबंधन या आवश्यकता अनुरेखण पर मॉडलिंग की उपयोगिता सिद्ध करे। इस दृष्टि से पुस्तक तकनीक के साथ संगठनात्मक अनुशासन की भी मार्गदर्शिका बनती है। निष्कर्ष में, सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिमिस्टिफाइड, सेकेंड एडिशन उन इंजीनियरों, तकनीकी प्रबंधकों, आर्किटेक्टों, परियोजना नेताओं और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जटिल सिस्टम्स के विकास को केवल अलग अलग डिजाइन कार्यों के बजाय एक समन्वित जीवन चक्र गतिविधि के रूप में समझना चाहते हैं। शुरुआती पाठक को इसमें बुनियादी अवधारणाओं, शब्दावली और सिस्टम स्तरीय सोच का प्रवेश बिंदु मिलता है। अनुभवी पेशेवर को मॉडलिंग, इंटरफेस, अनुरेखणीयता और एमबीएससी अपनाने के संगठनात्मक पक्ष पर अपने अभ्यास को जांचने का ढांचा मिल सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह मॉडल को वास्तविक इंजीनियरिंग निर्णयों से जोड़ती है, जैसे समस्या की परिभाषा, हितधारक समझ, डिजाइन सुसंगति और सत्यापन योजना। इसका बौद्धिक लाभ यह है कि पाठक जटिलता को केवल अधिक विवरण के रूप में नहीं बल्कि अधिक संबंधों, सीमाओं और निर्भरताओं के रूप में देखना सीखता है। समान विषय की अनेक पुस्तकों में या तो मानकों की औपचारिक भाषा प्रमुख होती है या किसी विशिष्ट मॉडलिंग भाषा और टूल का संचालन। यह पुस्तक अपेक्षाकृत अलग स्थान रखती है क्योंकि यह बुनियादी सिस्टम्स इंजीनियरिंग विचारों से शुरू करके मॉडल बेस्ड कार्यप्रणाली के तर्क तक पहुंचती है। अध्याय सार, आत्ममूल्यांकन और संदर्भ इसकी उपयोगिता को प्रशिक्षण सामग्री तथा कार्यस्थल संदर्भ दोनों रूपों में बढ़ाते हैं। फिर भी पाठक को इसे किसी एक संगठन के लिए तैयार लागूकरण नुस्खे के बजाय सिद्धांत, भाषा और व्यावहारिक निर्णयों को जोड़ने वाली मार्गदर्शिका मानना चाहिए। इसकी प्रमुख शक्ति सुलभ प्रस्तुति और मॉडलिंग को लोगों तथा प्रक्रियाओं से जोड़ने में है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉन होल्ट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।